आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है। इस विकास प्रक्रिया में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र देश में उत्पादन, रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की विकास गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता मिलती रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 मई 2026 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS 5.0 को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, कारोबार और खासकर एमएसएमई के लिए समय पर मिलने वाले ऋण सहायता क्यों महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ वर्षों में ECLGS किस तरह विकसित हुई है और ECLGS 5.0 के तहत पात्र कारोबारियों को किस तरह अतिरिक्त ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्रोताओं, ECLGS का मूल उद्देश्य ऐसे समय में कारोबारों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है जब अचानक पैदा हुई परिस्थितियों के कारण उनके सामने नकदी का दबाव बढ़ जाता है। खास तौर पर MSMEs के लिए ये सहायता बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऋण देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी देती है। इससे बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों का ऋण जोखिम कम होता है और वे पात्र कारोबारों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध आने में अधिक सक्षम होते हैं। आइए अब समझते हैं कि ECLGS की शुरुआत क्यों हुई और पिछले कुछ वर्षों में ये योजना किस तरह बदली है।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS की शुरुआत वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई थी। उस समय कोविड-19 महामारी के कारण कारोबार और आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। कारोबारों, खासकर MSME को अपनी परिचालन जरूरतें पूरी करने और कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता थी। ऐसे समय में सरकार ने मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को ECLGS के तहत दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर सरकारी गारंटी उपलब्ध कराई। इसका मतलब यह था कि अगर पात्र कर्जदार की ओर से ECLGS के तहत लिए गए ऋण का भुगतान नहीं हो पाता है तो निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण देने वाली संस्था को सरकार की गारंटी के माध्यम से जोखिम की सुरक्षा मिलती है। ECLGS की इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के लिए अतिरिक्त ऋण देना आसान हो और जरूरतमंद कारोबारों तक संस्थागत ऋण पहुंच सके। समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां और अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतें बदलती गई और उसी अनुसार ECLGS के दायरे का विस्तार किया गया। ECLGS 1.0 में MSME, कारोबारी प्रतिष्ठान, मुद्रा ऋण लेने वाले और व्यवसायिक उद्देश्य वाले व्यक्तिगत ऋण शामिल थे। इसमें ऐसे कर्जदार पात्र थे जिनका 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण 50 करोड़ रुपए तक था और ऋण भुगतान में देरी 60 दिनों तक थी। इसके बाद ECLGS 2.0 में 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक के बकाया ऋण वाले पात्र कर्जदारों को सहायता दी गई। ECLGS 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों को सहायता के दायरे में लाया गया। वहीं ECLGS 4.0 का मुख्य जोर कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर था। इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी इकाइयां शामिल थीं।
श्रोताओं, ECLGS की प्रत्येक अगली कड़ी ने उस समय की आर्थिक और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार योजना के दायरे को आगे बढ़ाया। ECLGS 1.0 से 4.0 के बीच कुल 1.19 करोड़ गारंटियां जारी की गई, जिनके अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपए की राशि की गारंटी दी गई। अब 2026 में बाहरी आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों के बीच ECLGS 5.0 को एक नए उद्देश्य के साथ सामने लाया गया है। अब सवाल है कि ECLGS 5.0 में ऐसा क्या है जो इसे कारोबारों के लिए अधिक उपयोगी बनाता है? योजना के अंतर्गत मिलने वाली अतिरिक्त ऋण सहायता की सीमा क्या है? कौन से कारोबारी इसके लिए पात्र हैं और ऋण की शर्तें क्या हैं? आइए इन पहलुओं को समझते हैं।
ECLGS 5.0 को मई 2026 को मंजूरी दी गई थी और यह योजना 31 मार्च 2027 तक या 2,55,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक लागू रहेगी। इस योजना को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लागू कर रही है। इसके तहत मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को सरकारी गारंटी दी जाती है ताकि वे पात्र कारोबारियों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा सकें। ECLGS 5.0 के दायरे में MSME, पात्र गैर MSME कारोबारी और अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियां शामिल हैं। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और पात्र NBFC अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। MSME और पात्र गैर MSME कारोबारियों के लिए 31 मार्च तक मौजूदा कार्यशील पूंजी सुविधा होना जरूरी है। साथ ही उनके ऋण भुगतान में 60 दिनों से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत सभी क्षेत्रों के MSME पात्र हो सकते हैं। हालांकि गैर MSME कारोबारियों के लिए कुछ क्षेत्र योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इनमें NBFC, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, चीनी और एथेनॉल, सूचना प्रौद्योगिकी, कागज एवं कागज उत्पाद, शैक्षणिक संस्थान तथा चाय और कॉफी को छोड़कर अन्य पेय पदार्थ और तंबाकू क्षेत्र शामिल हैं। अगर कोई कारोबारी पात्र और गैर पात्र दोनों क्षेत्रों में काम करता है तो उसकी पात्रता वित्त वर्ष 2025-26 में पात्र क्षेत्रों से होने वाले कारोबारों के अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। ECLGS 5.0 के तहत पात्र MSME को दिए गए अतिरिक्त ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है, जबकि पात्र गैर MSME के लिए यह गारंटी 90% है। इसके अलावा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस से योजना के तहत कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता। MSME और गैर MSME के लिए अतिरिक्त ऋण की सीमा वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कारोबार की अधिकतम फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल आउटस्टैंडिंग के 20% तक है। एक कर्जदार के लिए इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तक तय की गई है। ऋण की ब्याज दर भी निर्धारित व्यवस्था के तहत रखी गई है। MSME के लिए ब्याज दर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR से और पात्र गैर MSME के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR से जुड़ी हैं। दोनों मामलों में ऋण देने वाली संस्था बेंचमार्क से अधिकतम 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज ले सकती है, लेकिन कुल ब्याज दर 9% सालाना से अधिक नहीं हो सकती है। पात्र NBFC के मामले में ब्याज दर 13% सालाना से अधिक नहीं हो सकती है। इस ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल है, यानी कर्जदार को शुरुआती अवधि में ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियों के लिए व्यवस्था अलग है। उन्हें 31 मार्च 2026 तक मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास मौजूदा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होनी चाहिए और उनकी स्थिति स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हालांकि SMA2 खाते में शामिल नहीं है। इन विमानन कंपनियों के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता 100% तक हो सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपए प्रति कर्जदार है। हालांकि 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 1500 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि के लिए प्रमोटर या मालिकों की ओर से समान अनुपात में इक्विटी योगदान की शर्त है। विमानन कंपनियों के लिए ऋण पर ब्याज दर संबंधित ऋणदाता संस्था की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार तय होगी। ऋण की अवधि 7 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
श्रोताओं, ECLGS 5.0 के प्रभाव को इसके शुरुआती कार्यान्वयन से भी समझा जा सकता है। 20 अगस्त 2026 तक योजना के अंतर्गत 6,73,989 गारंटियां जारी की गई थी और इनकी गारंटीकृत राशि 2,50,024 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इनमें 97.3% गारंटियां संख्या के आधार पर MSME को मिली, जबकि कुल गारंटीकृत राशि में MSME की हिस्सेदारी 80.79% रही। ये दिखाता है कि योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी छोटा और मध्यम कारोबारी क्षेत्र बना हुआ है। योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से देश भर में जागरूकता और आउटरीच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 20 मई से 6 जून 2026 के बीच 9 स्थानों पर पहला चरण आयोजित किया गया। इसमें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटीज, NCGTC, बैंकों, PSB अलायंस, उद्योग संगठनों और कारोबारियों ने भाग लिया। इसके बाद 10 और स्थानों पर दूसरा चरण शुरू किया गया, जिनमें से 4 स्थानों पर अभियान पूरा हो चुका है। पात्र कारोबारी जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से भी योजना से जुड़ी जानकारी और ऋण सुविधा तक पहुंच बना सकते हैं। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाई।